मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 27 जनवरी 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अमन माया वाले, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। जगन्नाथ यादव, आप मुंबई से हैं। निरंजन कमलेश, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और प्रकाश विश्वकर्मा, आप चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं। तो अमन, जगन्नाथ, निरंजन और प्रकाश, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कई दिनों के बाद, लगभग 4 दिनों के गैप के बाद हम लोग इस रूप में मिल रहे हैं। हालांकि सोमवार को ऑडियो फॉर एक्सीलेंस जरूर आप लोगों के लिए आया था, लेकिन डेली ऑडियो गाइडेंस जिसमें हम न्यूज और न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस करते हैं, एक लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं। और खासकर 26 जनवरी, जो हमारा गणतंत्र दिवस था, उसके लिए बीच में एक दिन डेली ऑडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे कुछ मेल भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, मैं एक सूचना आपको इस रूप में देना चाहूंगा कि जो भी गजेटेड हॉलीडे होते हैं उसमें डेली ऑडियो नहीं आता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि उनकी सूचना देना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए मैं 26 जनवरी की सूचना आप लोगों को अलग से नहीं दे पाया था। तो इस बात का ध्यान रखें। और मैं जो गजेटेड हॉलीडे की बात कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजेटेड हॉलीडे की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में कुछ और छुट्टियां ऐड होती हैं, लेकिन डेली ऑडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट को न लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर की छुट्टियों को लेकर चलते हैं। तो मित्रों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, हमारा 67वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं को, अपनी टीम की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 67वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं लाइफ मैनेजमेंट से। लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं पिछला जो डेली ऑडियो रहा है उसमें सीखने के ऊपर कुछ बातें कर रहा था कि सीखना कैसे सीखें। दोस्तों, जब हम सीखने को रटने से जोड़ लेते हैं तो सीखना बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है, लेकिन जब हम सीखने को अपने व्यक्तित्व और अपनी चेतना से जोड़कर देखते हैं तो वह सीखना बिल्कुल अलग हो जाता है। जब ज्ञान केवल पाने के लिए हम सीखें, रटने के लिए केवल सीखें, परीक्षा के लिए केवल सीखें, तो सीधी सी बात है कि जैसे ही परीक्षा होगी वो सीखना हमारा गायब हो जाएगा, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, दोबारा परीक्षा देनी ही नहीं है, और जब तक परीक्षा देनी है तब तक हम उसे संभाल कर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारा जीवन जिनसे बदलता है, जिनसे हमारा जीवन चलता है, जो हमारे जीवन में हमें सफलता की ओर आगे ले जाते हैं, वह बेसिकली वह सीखना होता है जो हमारी चेतना और हमारे व्यक्तित्व में रच बस जाता है। उस सीखने को लेकर पिछले डेली ऑडियो में मैंने आप लोगों को एक प्रयोग करने के लिए दिया था। पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने वो प्रयोग किए होंगे, और आप लोगों में से बहुत से लोग, चूंकि वो जो मैंने काम दिया था उस दौर से हम लोग लगभग लगभग गुजरते ही रहते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि बिना प्रयोग किए ही आपके दिमाग में मेरी वह बात जम गई हो और आपके मन को मेरी वह बात सही लगी हो कि जब अगरबत्ती थोड़ी सी झुका दी जाती है तो वह लौ को बहुत जल्दी पकड़ती है, और जल्दी ही नहीं पकड़ती बल्कि बहुत तेजी से फिर वो भभकती भी है, बहुत तेजी से जलती भी है। मित्रों, मैंने बताया था कि यह एक मन के ढलान की स्थिति होती है। यदि हम कोई भी बात सीखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी होती यह बात होती है मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि हम अपने मन को भी थोड़ा सा झुकाएं। जब तक हम अपने अंदर विनम्रता का भाव नहीं लाएंगे तब तक सच पूछिए तो सीखने का काम उस तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। रटने का काम हो सकता है, सूचनाओं के कलेक्शन का काम हो सकता है, लेकिन जो सीखना है, जिस सीखने की परिभाषा मैंने अभी शुरू में दी है, वह काम पूरा नहीं होता। दोस्तों, इस विनम्रता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है मित्रों, और ये केवल विनम्रता का ही नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दुश्मन है, शायद हमारे संबंधों का सबसे बड़ा दुश्मन है, शायद हमारी सफलताओं का भी जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है और सबसे जो खतरनाक दुश्मन है, न दिखाई देने वाला अदृश्य दुश्मन है और जो जिंदगी भर ताउम्र दुश्मनी निभाता रहता है, वह होता है हमारा अपना ईगो। दोस्तों, इसके बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना भी होगा, बहुत कुछ महसूस भी किया होगा। और सुनने, पढ़ने और महसूस करने के दौरान आप लोगों में से बहुत लोगों ने यह संकल्प भी लिया होगा, फैसला भी किया होगा कि नहीं, इसको मुझे खत्म करना है, ये जो ईगो का सांप, जो कोबरा नाग जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो छोटी छोटी बातों में अपना फन फुफकारने लगता है और उसके फन फुफकारते ही एक विचित्र किस्म का जहरीला पदार्थ मेरी चेतना में फैल जारी होता है और चेतना में जारी होते ही फिर पूरे के पूरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ मेरी पूरे नसों में फैल जाता है, शरीर के एक एक रोम में उस ईगो का जहर अपना प्रभाव दिखाने लगता है। आप देखते हैं कि जैसे ही ईगो का ये कोबरा नाग, काला नाग, भयानक नाग फुफकारता है, वैसे ही सहजता खत्म हो जाती है, मन अनमना हो जाता है, अपना हम आंतरिक संतुलन खो बैठते हैं और लगता है कि मैं क्या से क्या नहीं कर डालूं। यह प्रतिशोधात्मक है, यह नहीं कि कुछ बड़ा से बड़ा क्या न रच डालूं, रचने की बात नहीं होती है, जो रचा हुआ है उसको खत्म करने की बात होती है। यह ईगो होता है दोस्तों, जो विनम्रता का सबसे बड़ा विरोधी है और जो सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यह जिंदगी भर चलता रहता है, जिंदगी भर मौजूद रहता है। इसीलिए ईगो के साथ जो हमारी लड़ाई होती है वो एक क्षण भी थमती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है दोस्तों, अंतिम सांस तक चलती रहती है। इसे हम धीरे 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 करके कम कर पाते हैं और लगभग लगभग खत्म होने की स्थिति तक अपने को पहुंचा पाते हैं, और पता नहीं खत्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहर जितना कम हो उतना ही बेहतर है। अगर है वो हमारे अंदर और प्रकृति ने दे ही दिया है तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि उसे, उसकी मात्रा को कम करें, और अगर मात्रा कम नहीं हो रही है तो उसके जहरीलेपन को कम करें। दोस्तों, होता क्या है, सीखने की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया होती एम्प्टीनेस की, जिसकी चर्चा मैं लगातार अपने स्टूडेंट से, स्पेशली उनके लिए तो करता ही हूं जो क्लास में यहां 15 दिन के लिए आते हैं, और ये मेरा संबोधन अभी उन स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर है जो अभी फरवरी की क्लास में आने वाले हैं। एम्प्टीनेस, खालीपन, आप अपने को खाली करके आइए। दोस्तों, सुनने में लगता है कि खाली करके आना क्या है, ये कोई थैला तो है नहीं कि उलट दिया और थैला खाली हो गया, डब्बे को उलट दिया और डब्बा खाली हो गया, ये खाली होना क्या है, कैसे कोई आदमी अपने आप को खाली करे। सच है, व्यावहारिक रूप में अगर आप सोच करके देखें तो दिक्कत होगी कि यार हम क्या खाली करें, क्या खाली करना है। मित्रों, खाली करने की बहुत सिंपल प्रक्रिया है, खाली करने की बहुत सिंपल प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया है केवल अपने अज्ञान का बोध होना। और अगर अज्ञान का बोध नहीं भी हो, चलिए आप मानते हैं कि आप बहुत जानते हैं, आपने एमए किया है, बीए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पता नहीं क्या क्या किया, आपको अपने ज्ञान का बोध है, मैं चलिए मान लेता हूं कि आपको अपना ज्ञान का बोध है, तो इसका बोध हो जाए कि मुझे और जानना है, एक जिज्ञासा पैदा हो जाए, दोनों चीजें हैं। देखिए, या तो हमें अपने ज्ञान का बोध ही नहीं है, प्याला खाली है, जो कप है वो खाली है, कितना भी भरते चले जाइए वो कप खाली ही बना रहता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा ज्ञान की भूख है, ज्ञान की पिपासा है कि उसका पेट भरता ही नहीं, वो खाली ही रहता है, और जो खाली ही रहेगा उसमें जब कोई भी चीज डाली जाएगी तो उसमें वो समा जाएगी, उसमें वो चीज आ जाएगी, उस वहां वो रुक जाएगी, वो उस प्याली का हिस्सा बन जाएगा, प्याले का हिस्सा बन जाएगा। या तो ये हो, और यदि आपको लगता है कि नहीं आप तो बहुत जानते हैं, आप अपने एरिया के, अपने परिवार के, या अपने दोस्तों के, या दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। वो जिज्ञासा इस बात की कि नहीं नहीं मैं ठीक है, दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूं, लेकिन मुझे अभी और जानना है, क्योंकि ज्ञान का सागर अपने आप में इतना विस्तृत है कि बहुत सबसे ज्यादा जानने के बावजूद मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। तब आप क्या करेंगे? आपका प्याला भरा हुआ है, आप सोचेंगे कि नहीं मुझे बड़े प्याले की जरूरत है, और फिर जब आप बड़ा प्याला अपने हाथ में ले लेंगे तो उसमें फिर से जगह है कि उसमें कुछ डाला जा सकता है, और अगर कोई चीज डाली जाएगी तो वो चीज वहां रुकेगी, क्योंकि संकट तो इस बात का है कि जो चीज डाली जा रही है वो वहां रुक रही है या नहीं रुक रही है, और यदि वो वहां रुक नहीं रही है तो फिर पचेगी कैसे, और यदि वो पचेगी ही नहीं तो फिर चेतना और व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी कैसे। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ भी खाना खाते हैं और खाना खाते ही वॉमिटिंग हो जाती है, बाहर निकल जाता है, तो अब आप चाहे कितने भी विटामिन प्रोटीन वाला भोजन क्यों ना कर लें, वो आपके शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा, उसको वहां कुछ समय तक रुकना ही होगा। फिर हमारी जो बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी और जितनी भी चीजें हैं वो सारे अपने प्रोसेस के थ्रू उस खाने को पचाएंगी, और तब वो खाना हमारे रक्त, हमारे एक एक रोम का हिस्सा बनेगा, बॉडी के एक एक सेल में समाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रुके तो, और ये जो ईगो है ये रुकने नहीं देता। ईगो तो बिल्कुल एक कह लीजिए कि एक नुकीले टापू की तरह होते, एकदम नुकीला सुई के नोक की तरह, आप वहां कोई चीज ठहरा ही नहीं सकते, वहां कोई चीज ठहरेगी ही नहीं, किसी चीज को रखेंगे तो बल्कि वो उस चीज को छेद देगी। इसलिए जो इगोइस्ट होते हैं आप देखिए कि उनके साथ लोगों के संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, लोग उनसे कतराना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि मालूम है कि जैसे ही हम जाएंगे उनका सांप फुफकारेगा और वो डंक मारेगा, और बेवजह क्यों हम अपने आप को परेशान करें। तो ऐसे लोगों के पास जो ज्ञान है भी वो सीमित रह जाता है, जितना है बस उतना ही है, वो बढ़ता नहीं है, और जब इसने बढ़ना बंद कर दिया है और दूसरे जो लोग लगातार बढ़ रहे हैं तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि जिन्होंने बढ़ना बंद नहीं किया है वो उससे ज्यादा बड़े हो जाएंगे, और जीवन में यही कुछ होता है। तो दोस्तों, जो एम्प्टीनेस, अपने को खाली करने का जो सिद्धांत है वो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। दो उपाय हैं, और जो सबसे अच्छा, प्यारा और सरल उपाय है वो ये है कि मुझे कुछ नहीं आता। ये कॉन्फिडेंसलेसनेस नहीं है, ये आत्मविश्वास की कमी की बात नहीं है, ये एक बोध है, ये एक समझ है कि दुनिया में इतने जानने वाले लोग हैं, लोग इतना जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, उनके सामने मुझे बहुत कुछ जानना है, या जिस चीज के लिए मैं जानने जा रहा हूं इसके बारे में मैं नहीं जानता, दूसरे मैं बहुत कुछ जानता हूं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं फरवरी की क्लासेस में, वो आईएएस की तैयारी कैसे करें इसको जानने के बारे में आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो ज्योग्राफी पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो ये जानने आ रहे हैं कि यार ये सब चीजें तो हैं, अखबार भी है, न्यूज भी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी है, बाकायदे एग्जामिनेशन में पेपर्स भी आते हैं, लेकिन इन सब चीजों की हम तैयारी करें कैसे, ये क्या चीज है। बस तो बहुत कुछ आप सब जानते होंगे, लेकिन शायद यह न जानते हो कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। बस आप यही बोध अपने अंदर पैदा कर लीजिए कि मुझे तैयारी करने के तरीके को जानना, और 15 दिन यही सब तो होगा कि तैयारी करने का तरीका कैसे होता है बस। और एक बार आपको तरीका समझ में आ गया तो फिर आप जानने लगेंगे। तो दोस्तों, हम अपने आप को कैसे खाली करें, इसके लिए बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया है, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एम्प्टीनेस है, अपने को खाली करने का सिद्धांत है, सीखने का सबसे सर्वोत्तम और प्राथमिक सिद्धांत है, और मैं चाहूंगा कि सारे मेरे जो प्रिय श्रोता हैं, जो क्लास में आने वाले स्टूडेंट हैं, और जो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता है, जीवन में सीखने के वाक्य के सामने कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगता है, वह लगातार अल्प विरामों के जरिए अपनी यात्रा करता रहता है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं पहले एक बार आपको खबरों किस सिलसिलेवार बता देता हूं, ताकि मेरे कहने के दौरान यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट जाए तो अभी से आपके ध्यान में रहे। पहला तो 67वां हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, इस पर मैं थोड़े से विस्तार से आप लोगों से बात करूंगा। दूसरा था कि अशोक चक्र जो सबसे बड़ा हमारा वीरता का चक्र है वो मोहननाथ गोस्वामी जी को मरणोपरांत दिया गया, उनकी पत्नी ने आकर के वो अशोक चक्र ग्रहण किया, तो उनको हम सब अपनी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मोहननाथ गोस्वामी जी को, और उनकी पत्नी के प्रति बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्हें अब नतमस्तक होते हैं उनके सामने कि वो उनकी पत्नी रही और बड़े विनम्रता के भाव के साथ आकर के उन्होंने वो अशोक चक्र का सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान स्वीकार किया। तीसरी जो खबर थी दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की खबर थी। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर मैं थोड़ी सी आप लोगों से थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। एक जो खबर थी वो महाराष्ट्र के जो अहमद नगर में जो सिंगड़ापुर का जो शनि मंदिर है उसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार एक विवाद की स्थिति बनती जा रही है। उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध था क्योंकि वो शनि देव का मंदिर था, लेकिन कुछ महिलाएं फिर वो संविधान और नागरिक अधिकारों की बातों को लेकर के उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें बीच में ही रोका गया। तो ये एक इशू है, इस इशू पर काफी कुछ लिखा भी जा रहा है। एक जो फिर अगली जो छोटी सी खबर थी दोस्तों वो है कि हमारे जो सैयद अकबरुद्दीन जी हैं, जिनको आप लोगों ने बार बार प्रवक्ता के रूप में सुना होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के रूप में और जो बहुत अच्छे प्रवक्ताओं में माने जाते हैं, उन्हें हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रतिनिधि, भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अक्सर यह होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हर देश अपने अपने प्रतिनिधि, या कह लीजिए कि एम्बेसडर ही कह लीजिए, लेकिन वहां डेजिग्नेशन दूसरा हो जाता है, वो हमारे राजदूत हैं अकबरुद्दीन जी। हम लोगों के समय में इस तरह के प्रश्न आते थे, अब तो इस तरह के प्रश्न प्री में नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए ताकि कभी भी आप अगर उनके नाम का उल्लेख अखबारों में पढ़ें तो समझ सकें कि ये कौन है और ये क्यों कह रहे हैं और आपके लिए क्यों ये इतनी अहमियत रखते हैं। लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन है, डेफिनेटली जिसमें स्टेट सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, उसमें इस नाम की काफी अहमियत है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद अंतिम जो छोटी सी खबर थी दोस्तों वो मिशन आदित्य LA, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। ये 2019-20 में छोड़ा जाएगा और खासकर वो सूर्य के अध्ययन के लिए उसमें सहायक होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए आदित्य LA, आदित्य का मतलब भी आप जानते हैं कि आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है, तो इसको आप रिलेट करके देख सकते हैं कि सूर्य के अध्ययन के लिए है जो 2019-20 में छोड़ा जाएगा। मित्रों ये इंपॉर्टेंट खबरें थी, और अब मैं कुछ इन खबरों में से जो महत्वपूर्ण खबरें मुझे जो लग रही हैं उनके मैं थोड़े से डिटेल्स में जाता हूं। हमारा देश 67वें गणतंत्र दिवस में डूबा हुआ था, 26 जनवरी को हमने पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया। हमारी जो एम्बेसीज होती हैं फॉरेन कंट्रीज में, वहां भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यहां तक कि बहुत से देशों में जो हमारे NRIs होते हैं वो भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये एक परंपरा है। मित्रों यहां मैं एक तो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जो न्यूज से हैं। पहली तो ये कि आपने देखा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये आपको मालूम होना चाहिए। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर आपको मालूम होना चाहिए, राइट? आप जब 15 अगस्त की बात जब आएगी तब आप देखेंगे कि लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रधानमंत्री लाल किले से फिर पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ, और यह है हमारा गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारे देश को विधिवत एक गणराज्य घोषित किया गया जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। सेकेंड पॉइंट, हम इससे पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो गणतंत्र दिवस पर, इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद साहब थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो गणतंत्र दिवस पर जब भारत किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को अपने यहां मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता है तो ये एक सम्मान की बात होती है उस राष्ट्र के लिए भी, और नो डाउट कि हम तो उन्हें एक सम्मानित अतिथि के रूप में बुला ही रहे हैं। और मित्रों कहीं ना कहीं इसका संबंध इस बात से भी होता है कि उस देश के साथ भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, बेहतर हैं, और हम चाहते हैं कि उसके साथ हमारे संबंध और घनिष्ठ हों। तो ये सीधे सीधे मेहमान नवाजी की बात नहीं है कि हमने बुला लिया और वो आ गए, इन सब के पीछे बहुत ही एक सोची समझी नीति होती है, और ये दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि हम जिनको भी चाहेंगे बुला लेंगे और वो आ जाएंगे, जो हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं वो भी बहुत सोच समझ कर उसे स्वीकार करते हैं। तो राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे। और इसी में जो एक इंपॉर्टेंट खबर है, मुझे लगता है कि आपको स्पेशली आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि जो परेड होती है, आप लोगों ने चैनल्स पे देखा होगा, मैंने तो कई साल तक उसको लाइव ही वहां देखा है जब मैं राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा जी के साथ था। पहली बार ऐसा हुआ है कि उस परेड में एक विदेशी सेना की टुकड़ी ने भाग लिया। और आपको मालूम है कि ये विदेशी सेना की टुकड़ी कौन थी, बट नेचुरल है कि फ्रांसीसी सेना थी, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति वहां मौजूद थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी ही सेना की टुकड़ी को यह सम्मान मिला। तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि यह पहली बार हुआ है। इसके बाद अगर होता रहेगा तो वो आपके लिए जनरल नॉलेज की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट शायद न रह जाए, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट जरूर है। तो दोस्तों, ये तो एक तीन पॉइंट्स थे जो पूरी न्यूज में जनरल नॉलेज के लिहाज से निकल कर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा, आप देखेंगे कि अपनी एनालिसिस के सिस्टम को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बदलता रहता हूं। हो सकता है कि वो बदलाव आपके बहुत स्पष्ट रूप से पकड़ में न आए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे एक नया नया रूप देता रहूं ताकि आपकी चौतरफा तैयारी होती रहे। मित्रों, अब मैं आता हूं इस गणतंत्र शब्द पर। संविधान का हमारा प्रीएम्बल है जिसको जनरली लोग प्रस्तावना कहते हैं। मैं एक स्पष्ट करना चाहूंगा एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जब अनुवाद किया गया है प्रीएम्बल का, उसका अनुवाद हिंदी में प्रस्तावना नहीं है। नोट कर लीजिए, वो शब्द है उद्देशिका, वो शब्द ही है उद्देशिका, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रस्तावना शब्द बिल्कुल आप उपयोग में न लाएं। बहुत से किताबों में भी आपको प्रस्तावना शब्द ही पढ़ने को मिलेगा, तो वो है उद्देशिका। देखिए, जब हम उद्देशिका की बात करते हैं और प्रस्तावना की बात करते हैं तो दोनों में एक बड़ा फर्क होता है। प्रस्तावना में तो आप किसी भी किताब को देखे उठाएंगे तो आपको एक पेज दो पेज की प्रस्तावना मिलेगी। उसको लोग, कुछ लोग प्रस्तावना कह देते हैं, कुछ लोग दो शब्द कह देते हैं, कुछ लोग भूमिका कह देते हैं, जो भी आप नाम दें। उसमें जनरली ये लिखा जाता है इस प्रस्तावना के अंतर्गत कि भाई ये किताब, ये चीज क्यों लिखी गई है, वो प्रस्तावना होती है, भूमिका होती है। लेकिन जब हम उसको उद्देशिका कहते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़ी बात हो जाती है कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो पूरा संविधान जो बनाया है इसका उद्देश्य क्या है, सोच करके देखिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो जो हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, इसका जो हिंदी शब्द उद्देशिका दिया गया, ये बहुत ही सार गर्भित शब्द है। यानी कि जो प्रीएम्बल है, जो उद्देशिका है, उसमें हमारे पूरे के पूरे संविधान का सार निहित है। मतलब उस उद्देशिका में जो जो बातें कही गई हैं, आप कह सकते हैं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन समझने और समझाने के लिए कि उसकी ही डिटेलिंग फिर बाद के संविधान के सब पूरे के पूरे हिस्से में की गई है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमने कृत संकल्प लिया है संविधान के उद्देशिका में कि हम ये करेंगे, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है, हम ऐसे ऐसे अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो यहां मैं खासकर आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा, वो है गणतंत्र शब्द। खासकर मुझे यह लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी करने के पैटर्न पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि सिविल सर्विस, जब हम आईएएस, स्पेशली मैं सिविल सर्विस की बात जब बात कर रहा हूं तो मैं आईएएस की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी आप ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़िए, उन प्रश्नों की बड़ी छवियां होती हैं, बड़ी इमेजेस होते हैं, शेड्स होते हैं, उन शेड्स को पकड़ना बहुत जरूरी होता है कि वो चाहते क्या है। और वो शेड्स आपके तब तक पकड़ में नहीं आते जब तक कि सब्जेक्ट पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ ना हो। ये सिविल सर्विस की तैयारी का सबसे बड़ा चैलेंज है, और मैं समझता हूं कि सबसे सबसे सुंदर और सबसे प्यारा चैलेंज भी है कि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर आपको इतना मजा आने लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम मेरे साथ तो दोस्तों ये स्थिति रही है। और 15 दिन की क्लासेज में हम यही कोशिश करते हैं, खासकर इन 15 दिनों की क्लासेज में, ये बात मैं उन स्टूडेंट से कह रहा हूं जो आने वाले हैं, कि आप देखेंगे कि लगभग 6-7 क्लासेज कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग लेंगे। एक क्लासेस डेढ़ घंटे की होती है, लगभग 8-10 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे और उद्देशिका को ही लेकर के बात करेंगे, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो करेक्टर है, डेप्थ है, वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि अब पहली बार आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सच में ये क्या है। यह तैयारी का एक पैटर्न होता है सिविल सर्विस की तैयारी का, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहां जो गणतंत्र दिवस है, जो गणतंत्र शब्द है, इसकी आपको जो छवियां हैं, जो इसके जो शेड्स हैं, उसको समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली है क्या। हालांकि सामान्य रूप में आप सब पढ़ेंगे तो किताबों में दिया हुआ है, आप रट भी सकते हैं और बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं है कि कोई गणित का बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको आपको समझने और समझाने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे उसके कितने डेप्थ में उतर सकते हैं, उसको कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, यही आपके दिमाग में चिंतन और मनन की जरूरत होती है, मांग करती है कि आप उस पर मनन भी करें, चिंतन भी करें, केवल अध्ययन करके उसे न छोड़ दें, केवल रट कर उससे मुक्ति न पालें। जैसे गणतंत्र, अब ये जो गण शब्द है, गण का मतलब होता है समूह, अगर उस तरीके से लें तो, सामान्य रूप में लें तो गण का मतलब होता है समूह, तंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें समूह हो। तो अगर हम भारत को देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई भारत एक इस तरह का गण समूह है जिसमें कई राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर के जब एक राष्ट्र की रचना की, राष्ट्र को बनाया, वो भारत है, और इस तरीके से ये गणतंत्र है। एक पहली डेफिनेशन हुई, अगर हम शाब्दिक अर्थों पर जाएंगे तो। लेकिन संविधान में जो गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, जो गणराज्य का प्रयोग किया गया है, वो बिल्कुल एक दूसरे ही संदर्भ में है। संदर्भ इसका बहुत ही सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत कठिन संदर्भ है। संदर्भ केवल यह है कि जो भारत का जो प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा। देखिए, अब जब राष्ट्र का प्रमुख होगा तो फिर अब आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का प्रमुख कौन। राष्ट्र के प्रमुख के रूप में आपके सामने दो व्यक्तित्व आएंगे, पहला राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री। इनमें दोनों में कौन, तो जब प्रमुख में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, फिर वो राष्ट्रपति होंगे, नाम ही है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शब्द में क्या निकलता है कि जो प्रथम मंत्री है, सबसे प्रमुख मंत्री है, चीफ जो है हमारे देश के, और वो प्रमुख है। तो राष्ट्रपति प्रमुख हुए, मतलब अगर हम पुरानी भाषा में बात करें तो कह दीजिए कि राष्ट्रपति राजा हुए, और राजा के जो सबसे बड़े मंत्री हुए वो प्रधानमंत्री हुए, यानी कि जो राष्ट्र का प्रमुख हुआ वो राष्ट्रपति हुआ, और जो सरकार हुई वो राष्ट्रपति की सरकार हुई। ये बात अलग है कि उसका पूरा का पूरा गठन पावर सारे के सारे प्रधानमंत्री के पास है। तो अब आप देखिए कि जब आप गणराज्य शब्द को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो कितने चरित्र आपके सामने अलग तरीके से उस टॉपिक के खुलते चले जाते हैं। तो राष्ट्र का जो प्रमुख है वह वंशानुगत नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अभी जो राष्ट्रपति है फिर उनके बेटे फिर राष्ट्रपति बनेंगे, फिर उनके बेटे राष्ट्रपति बनेंगे, जो राजतंत्र में होता है कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। चुनाव होंगे, हर साल राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। यह बात अलग है कि वही राष्ट्रपति दोबारा चुन लिए जाए, वही राष्ट्रपति तीसरी बार चुन लिए जाए, कितनी बार भी चुने जाए। यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के बेटे ही अगली बार राष्ट्रपति बन जाए, फिर उसके बाद उनके बेटे राष्ट्रपति बन जाए, फिर उनके बेटे राष्ट्रपति बन जाए, और ऐसा 50, 100, 200 साल तक चलता रहे। यह हो सकता है, संविधान में इस बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन व्यवहार में कहां होता है। हमारे यहां तो यह भी नहीं कहा गया है कि दो बार के बाद कोई राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेगा, जैसा कि अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति, हालांकि वो राष्ट्रपति हमारे यहां के राष्ट्रपति की स्थिति में बहुत फर्क है, वहां तो सीधे सीधे है कि दो बार के बाद कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति दो बार से अधिक नहीं बन सकता, और उस हिसाब से ओबामा जी का अभी लास्ट टर्म चल रहा है। हमारे यहां यह भी नहीं, तो वो सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये है कि वंशानुगत नहीं होगा, चुनाव होंगे, ये इसका करेक्टर है। अब आप देखिए मित्रों कि अब हम कुछ शब्द ले, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इंग्लैंड को लीजिए, उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइटेड, कई यूनाइट हो गए हैं। आपको मालूम है कि उसमें फिर तीन चार, जैसे आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, ये तीन चार जो हिस्से हैं वो कनेक्ट यूनाइट हुए हैं, और फिर किंगडम, वहां अभी भी किंगडम है, राजा का शासन वहां अभी भी है, जब महारानी का आप नाम सुनते हैं तो वहां की महारानी और हमारे यहां के राष्ट्रपति पैरेलल है एक तरीके से कह लीजिए, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है और ये छोटा अंतर नहीं है। वो अंतर यह कि वहां की जो महारानी होंगी वो वंशानुगत होंगी, परिवार से ही वो आते चले जाएंगे। हमारे यहां ऐसा नहीं होगा, हमारे यहां चुनाव है, इसीलिए वहां किंगडम शब्द है और हमारे यहां रिपब्लिक शब्द है। तो मित्रों, ये एक तैयारी करने का ढंग होता है। और फिर मैं एक इशारे के तौर पर आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, और ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये जो गणराज्य शब्द है ये हमने लिया कहां से है, क्या हमने नया कॉइन किया है। आपको चाहिए कि आप थोड़े से इतिहास की किताब उल्टे और 12वीं के इतिहास की किताब पर जाएं और उसमें आपको महाजनपद का एक लेसन मिलेगा जिसका नाम ही है राजा, किसान और नगर। उसमें आपको प्रारंभिक राज्य के अंतर्गत 16 महाजनपद के नाम मिलेंगे जिन्हें हम गणराज्य के नाम से जानते हैं क्योंकि वो गणों से संबंधित थे, वहां से हमने गणराज्य लिया है। तो ये जो गणराज्य का कॉन्सेप्ट है भारत में काफी पहले से था लेकिन वो इसी रूप में नहीं था, वो एक डिफरेंट रूप में था, लेकिन ये जरूर था कि वहां भी राजा पूरी तरह से निरंकुश नहीं था उस गणराज्य के गणराज्य में जिसे हम महाजनपद कहते हैं और 16 जनपद उस समय थे। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत कर लें और उस लेसन को देख लें तो ये गणराज्य शब्द और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मित्रों, जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपको मालूम है कि लगभग 1,150 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ उसकी लगी हुई है और चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कुछ विवाद की स्थितियां भी खड़ी करता रहता है। तो एक अरुणाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो एक थोड़ा सा विवाद में आ गया है। आपने न्यूज में भी सुना कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में चली गई है और वहां अब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। इसको लेकर के मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंग्रेजी में चूंकि कमेंट है इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि 1994 में एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर कट तरीके से कहा है कि किसी सत्ताधारी पार्टी के पास बहुमत है या नहीं है या मेजॉरिटी किसके पास है, इसका फैसला सही फ्लोर ऑफ द हाउस में होना चाहिए, विधानसभा या संसद में होना चाहिए, कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसे आपको चाहिए कि अलग से नोट कर लें। दोस्तों, न्यूज के बारे में इतना ही और न्यूज़पेपर्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सारी क्लिपिंग्स बट नेचुरल है कि आज तो 27 जनवरी आज की सुबह आप लोगों की भी बड़ी खुशनुमा सुबह रही होगी, बशर्ते कि आप लोगों की सुबह होती हो। मुझे नहीं मालूम कि किन किन की सुबह होती है क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों को देर तक पढ़ने की आदत है और सुबह इसी कारण देर से भी उठने की आदत है, लेकिन आज मेरी सुबह बड़ी खुशनुमा रही क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि वाह क्या बात है, आज तो बड़े इत्मीनान के साथ सुबह कटेगी। तो फिर मैंने आहा जिंदगी के कुछ दो तीन बड़े खूबसूरत लेख पढ़े, तो आज की मेरी सुबह कुछ अलग तरीके से रही है। लेकिन आप लोगों के आज का दिन अलग तरीके से नहीं होगा क्योंकि मैं 26 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो मेरे पास कुछ 10-11 स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने, जो अभी फरवरी की क्लास में आ रहे हैं और उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं कि जो भी स्टूडेंट इनसे कांटेक्ट करना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि नाम अधिक हैं दोस्तों इसलिए थोड़ी सतर्कता से सुनिएगा, जो आपको जरूरत के लगे उन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से वो नाम पढ़ रहा हूं। पहला नाम है यशराज जी का जो हाजीपुर पटना से आ रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर है 9430564144। दूसरे फ्रेंड हैं इम्तियाज हुसैन जो आरा बिहार से आ रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर है 9122575233। अगले फ्रेंड हैं अर्जुन नवीन भाई परमार जो जूनागढ़ गुजरात से आ रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर है 9925373600। अगले फ्रेंड हैं अर्जुन हिरपरा जो राजकोट से आ रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर है 9904944810। अगले फ्रेंड हैं अभिजीत नामदेव पाटिल जो सांगली महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अभिजीत का नंबर है 7720917709। अगले फ्रेंड हैं प्रत्यूष कुमार, आप पटना से आ रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर है 8002957196। अगले दोस्त हैं दीपेश ओझा जो धनबाद गिरिडीह से आ रहे हैं। जो मैं दो नाम ले रहा हूं ना, इसका मतलब है कि यहां के स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा धनबाद गिरिडीह, मतलब धनबाद और गिरिडीह से आने वाले स्टूडेंट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है दीपेश ओझा का 8863931532। अगले फ्रेंड हैं राज दवे जो गुजरात से आ रहे हैं, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है सिर्फ गुजरात लिखा है, इनका नंबर है 9429345169। अगले फ्रेंड हैं अतुल पाल जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, अतुल का नंबर है 9565337993। अगले दोस्त हैं आनंद मोहन जो न्यू दिल्ली / गुड़गांव, इन्होंने लिखा है। आनंद मोहन का नंबर है 9582006857। और अंतिम फ्रेंड हैं विनोद कुमार वर्मा, जिन्होंने इलाहाबाद और गोंडा दोनों नाम दिए हैं, दोनों स्थानों के नाम दिए हैं। विनोद कुमार वर्मा का नंबर है 8354910166। तो मित्रों, ये कुछ फ्रेंड्स थे, जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहे मोबाइल नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकता है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स को दिया जाए, तो आपको अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और स्थान, ये चार चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। इनमें से अगर कोई भी कमी होगी तो फिर अनाउंस करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इस बीच में बहुत से मेल मिले हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका मेल लिखने के लिए। इनमें से कुछ दोस्तों के मैं नाम लेना चाहूंगा, वो हैं विभोर शर्मा दिल्ली से, राम प्रताप सिंह, धीरज कुमार चौधरी मुंबई से, रचना बिंदल आगरा से, शेखर रोचानी, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ से, ओपी जाट अजमेर से, कार भट्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अभिषेक ताम्रकर दमोह मध्य प्रदेश से, इंद्रजीत कुमार महतो पश्चिमी चंपारण से, भावना पांडे, विनेश चेटली, एस के सरकार इलाहाबाद से, गोपाल तिवारी न्यू दिल्ली से, रजिया बेगम, सुधांशु अग्रवाल विदिशा मध्य प्रदेश से, प्रीति वंसोड दुर्ग छत्तीसगढ़ से, शालू पांडे वाराणसी से, सौरभ यादव कानपुर नगर से, अभिषेक सोनी विवेक कुमार चंडीगढ़ से, सुरेखा मुंबई से, रुचिता शास्त्री मुंबई से, पार्थ ठक्कर और कृष्ण कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मित्रों, जो सौरभ यादव कानपुर नगर से हैं, उनके मेल को मैंने, आप जितने भी मेल आए हैं उसमें से बेस्ट मेल के रूप में छाटा है, तो सौरभ इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।